नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में रात भर हुई बारिश से मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सैन्य प्रभुत्व और उत्पीड़न वाली राजनीति के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नाटो यूक्रेन को अपने रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्र वापस जीतने में मदद कर सकता है। और एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर फोर मुकाबले में आज शाम भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि दो वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ियां जल्द ही शुरू की जाएंगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पहली ट्रेन ने सभी परीक्षण और ट्रायल रन पास कर लिए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि दूसरी ट्रेन के अगले महीने के मध्य तक परीक्षण पूरे कर लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि रात भर की यात्रा के दौरान नियमित सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दोनों तरफ से इन रेलगाड़ियों को एक साथ शुरू करना होगा। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है, जिसमें 16 कोच होंगे। यात्रियों को इस ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास, एसी टू टियर और एसी थ्री टियर में सफर करने की सुविधा मिलेगी। इस रेलगाड़ी में 1128 यात्री यात्रा कर सकेंगे और इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। रेल मंत्री ने आगामी त्योहारों के दौरान 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की।
इस साल 12,000 स्पेशल ट्रेन का टारगेट लिया, तो मैं बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूंगा 12,000 में से 10,000 ट्रेन इवन बिफोर पीक रश अक्टूबर कम्स, उससे पहले नोटिफाई हो जाना, ये रेलवे के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। करीब 150 ट्रेन होंगी जो कि टोटली अनरिजर्व्ड होंगी, जो कि लास्ट मिनट पे मूवमेंट के लिए चलेगी, और 50 और गाड़ियां नोटिफाई हो जाएगी आने वाले 2-3 दिन के अंदर। 1 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेन्स का मूवमेंट चालू होता है, जो कि चलेगा करीब करीब 15 नवंबर तक।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में प्रमुख दलहनों और तिलहनों की खरीद को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कल एक उच्च स्तरीय बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि खरीद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और किसान केंद्रित होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने दोनों राज्यों के किसानों से उड़द और अरहर की पूरी खरीद के साथ साथ मूंग, तिल, मूंगफली तथा सोयाबीन को भी क्रय करने की मंजूरी दी। इसका अनुमानित मूल्य 13,800 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तेज वर्षा और लोअर टेरना परियोजना से पानी छोड़े जाने के कारण टेरना नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे लातूर जिले के औसा तालुका का एक गांव बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई घर जलमग्न हो गए हैं और एहतियात के तौर पर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लातूर सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाढ़ के पानी के कारण आंशिक रूप से बंद दिया गया है। उधर पश्चिम बंगाल में रात भर हुई बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। राजधानी कोलकाता भी इसके गंभीर प्रभावों का सामना कर रही है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में रात भर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे व्यापक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और 10 लोगों की जान चली गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। वहीं बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, झारखंड, तेलंगाना और विदर्भ में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से प्रेरित सरकार परिवर्तन और प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं मोदी सरकार कैसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से भारत के भविष्य को आकार दे रही है।
सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्वपूर्ण निर्माण खंड है। ये एक ऐसे छुपे हुए मस्तिष्क की तरह काम करता है जो उपकरणों को चलाने में मदद करते हैं। 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर यात्रा को कल्पना से हकीकत में बदला है। इस महीने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजिटल डायमंड बताया।
सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। ये सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण के लिए 50% तक समर्थन देता है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से इसने 280 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों और 70 से अधिक स्टार्टअप्स को जोड़ा है, जबकि स्पेक्स स्कीम के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के लिए 25% तक मदद दे रही है। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमीकॉन इंडिया 2025 में तब एक अहम पड़ाव पर पहुंची जब इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को आधिकारिक तौर पर भारत में निर्मित चिप्स का पहला सेट भेंट किया। ये सभी पहले एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर उद्योग के निर्माण में देश की लगातार हो रही प्रगति को दिखाती हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज का भारत दुनिया में विश्वास जगाता है और जब मुश्किलें आती हैं तो दुनिया भारत पर दांव लगा सकती है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोग इस महीने की 22 तारीख से लागू GST सुधारों का लाभ उठा सकते हैं। नई कर संरचना के अंतर्गत GST परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4-स्तरीय संरचना से 5% और 18% की 2-स्तरीय संरचना में सरल बना दिया है। विभिन्न वस्तुओं और सेवा पर कर कम करने ये सुधार नागरिकों को काफी राहत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में GST में बड़ी कटौती की है। इसी कड़ी में सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले लगने वाले 18% कर को हटाकर अब पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया है। इस कदम से आम नागरिकों में हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों के इलाज के लिए होने वाले खर्च कमी आएगी। सरकार ने कैंसर और गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी कर मुक्त कर दिया है। इस निर्णय से लंबी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के दवाओं में होने वाले खर्च में कमी आएगी। इसके साथ ही गौज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और थर्मामीटर जैसे कई मेडिकल उपकरणों में भी कर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निवासी सुयोग्य शुक्ला ने कहा कि दवाओं और इंश्योरेंस पर कर कम होने से लोगों को फायदा होगा और उनका आर्थिक बोझ कम होगा।
सरकार के द्वारा लाए गए नए GST रेट से कई दवाइयां और इंश्योरेंस सस्ता हो गया है, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। अब इससे आम आदमी के लिए दवाइयां खरीदना और इलाज करवाना आसान हो जाएगा।
हेल्थ केयर सेक्टर में हुई इन कटौतियों से मरीजों, आम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। रोहन और सकलेन अख्तर के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि वह भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानबाजी करके इस वैश्विक मंच का दुरुपयोग कर रहा है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने परिषद के 60वें सत्र को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत की भूमि पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश करने की बजाय उसे खाली करना चाहिए और अपनी गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो वर्तमान में जीवन रक्षक प्रणाली पर टिकी हुई है।
भारत के खिलाफ निराधार और दुष्प्रचार पूर्ण बयानों के साथ इस मंच का लगातार दुरुपयोग कर रहा है। हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने के बजाय उन्हें अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करना चाहिए और जीवन को बचाने और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सैन्य प्रभुत्व और मानवाधिकार रिकॉर्ड द्वारा पेश की गई गुणवत्ता उत्पीड़न से दागदार है। शायद एक बार जब उन्हें आतंकवाद के निर्यात से समय मिल जाए तो वे संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों को निर्धारित करने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने से बचें।
Bombing their own people.
भारत के प्रतिनिधि ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और गैर चयनात्मक बने रहना चाहिए। उन्होंने परिषद में सामूहिक प्रयासों का भी आह्वान किया, जिससे विभाजन के बजाय एकता और रचनात्मक सहभागिता को बढ़ावा मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन नाटो और अमेरिका के सैन्य सहयोग से रूस से अपना सारा क्षेत्र वापस जीत सकता है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन युद्ध की स्थिति में था और उसकी जीत उसे अपने मूल स्वरूप में वापस ला सकती है। उन्होंने रुख में ये बदलाव यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद आया है और इसका एक बड़े बदलाव के रूप में स्वागत किया गया। अमरीकी राष्ट्रपति के इस बयान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जमा यूरोपीय नेताओं और राजनयिकों को इसके अर्थ को लेकर असमंजस में डाल दिया है। श्री ट्रंप ने यह भी कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना हमास को पुरस्कार प्रदान करने जैसा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हमास से कहा है कि सभी बंधकों और मारे गए लोगों के शवों को तुरंत इसराइल को सौंप दिया जाए। श्री ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए इस संगठन को खोखले शब्दों से भरा करार दिया और वैश्विक संघर्षों पर ठोस कार्रवाई की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी करते हुए इसे लंबा, खिंच चुका और गलत अनुमान पर आधारित बताया, जबकि शुरुआत में माना गया था कि ये संघर्ष जल्दी खत्म होगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
एशिया कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर फोर मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। कल खेले गए सुपर फोर के मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। अबू धाबी में खेले गए इस मैच में श्रीलंका के दिए गए 134 रन के लक्ष्य को पाकिस्तान ने 18 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की महिला एक दिवसीय रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन किया था और अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस बीच ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप आज से नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू हो रही है। इसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाएं शामिल हैं। प्रतियोगिता 2 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 18 देशों के 208 युवा निशानेबाज 51 पदकों के लिए चुनौती पेश करते नजर आएंगे। भारत की तरफ से 69 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
उत्तर प्रदेश ने कल आयुष्मान भारत दिवस मनाया। राज्य भर में विशेष शिविरों का इस अवसर पर आयोजन किया गया, जहां आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिससे उत्तर प्रदेश देश में कार्ड वितरण के मामले में शीर्ष राज्य बन गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
धन्यवाद फरहत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर बिगड़े बोल। कहा, रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग कर रहे भारत और चीन। हरी भूमि सहित कई अखबारों की सुर्खी है। दैनिक भास्कर लिखता है, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप का पहला भाषण। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने दुनिया को कोसा, लेकिन रूस पर कार्रवाई को लेकर चुप। पहली बार देश से बाहर भारतीय प्राइवेट कंपनी बनाएगी बख्तर बंद वाहन। राजनाथ ने मोरक्को में किया टाटा एडवांस सिस्टम के संयंत्र का उद्घाटन। दैनिक जागरण की खबर है। 71वें फिल्म पुरस्कार के आयोजन की खबर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, शाहरुख खान पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित। देशबंधु की सुर्खी है, मोहनलाल को मिला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पंजाब से लेकर गुजरात तक मानसून वापसी की राह पर। कोलकाता में मूसलाधार बारिश, 10 की मौत जनसत्ता में है। वीर अर्जुन लिखता है, कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप, हवाई, रेल और सड़क परिवहन प्रभावित। राजस्थान पत्रिका ने सुधार शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है। प्लेसमेंट एजेंसियों पर लगेगी लगाम, शोषण से होगी मुक्ति। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी रेगुलेशन बिल लाने की तैयारी। 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक, बर्फ का आकार घटकर न्यूनतम स्तर पर।
धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में रात भर हुई बारिश से मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हुई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सैन्य प्रभुत्व और उत्पीड़न वाली राजनीति के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नाटो यूक्रेन को अपने रूसी नियंत्रण वाले क्षेत्र वापस जीतने में मदद कर सकता है। और खेलों में एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सुपर फोर मुकाबले में आज शाम भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।